आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें।
प्रभु में हमारे प्रिय श्रोता, आपको हमारा हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप प्रभु के अनुग्रह से कुशल हैं। क्या आप निराश तो नहीं हैं? क्या आपको कोई चिंता तो नहीं सता रही है? यदि हाँ तो स्मरण रखिए, अभी परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है। सब कुछ उसी सर्वशक्तिमान के नियंत्रण में है। पवित्र बाइबल बताती है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई उनका मुंह कभी काला ना होगा, अर्थात वे कभी निराश ना होंगे। सो अपनी दृष्टि अपनी समस्या की ओर से हटाकर देखिए, अभी आपकी चिंता और निराशा दूर भाग जाएगी। आप तुरंत परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित हो उठेंगे। सो आइए सब बातों से मुक्त होकर कुछ क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करते हैं। क्या आपको पिछले कार्यक्रम के विषय में कुछ याद है? चलिए जाने दीजिए, हम ही आपको याद दिला देते हैं। पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने सरकार अथवा अधिकारियों के प्रति विश्वासी जन के कर्तव्यों के विषय में अध्ययन किया था। विश्वासी जन के लिए सातवें पद में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं, जो जिसे जो देना है उसे दो, जिसे कर चुकाना है उसका कर चुकाओ, जिसे चुंगी देनी है उसे चुंगी दो, और जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना है उसका आदर करो। सो हमने सीखा कि प्रत्येक अधिकार परमेश्वर की ओर से है, विश्वासी को उसके अधीन रहना चाहिए, परंतु हम राजनीति तथा परमेश्वर को संयुक्त नहीं कर सकते। यदि ऐसा करेंगे तो हानि होगी, दोनों ही असफल हो जाएंगे। हमें दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना अनिवार्य है, किंतु पृथक पृथक। इसलिए यदि अधिकारी परमेश्वरहीन है तो ऐसी दशा में हमें परमेश्वर के नियमों को प्राथमिकता देनी होगी। विश्वासी का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का प्रसार करना है, जिसके द्वारा प्रत्येक मानव का उद्धार संभव है। चूंकि अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है, इसलिए प्रत्येक सरकारी अधिकारी व नेतागण परमेश्वर के समक्ष उत्तरदायी हैं। सो आज हम रोमियो की पत्री के 13वें अध्याय के 8वें पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। आज के बाइबल अध्ययन का मुख्य विषय होगा पड़ोसी के साथ विश्वासी जन के संबंध। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि परस्पर प्रेम ही समस्त व्यवस्था की पूर्ति है। सो आइए इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु और प्रेमी पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपसे विनती करते हैं कि जिस प्रकार से आपने अब तक इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता की है, आज भी हमारी सहायता करने की कृपा करें। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को हमें सिखाएं, हमारे लिए वास्तविक बना दें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं को आप दूर करने की कृपा करें, ताकि प्रभु जी हम बड़ी स्वतंत्रता के साथ आपका ध्यान कर सकें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय, रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 8 से 10 पदों को यह इस प्रकार से लिखा है, पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के ऋणी ना बनो, क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूर्ण किया है, और इस कारण ना तो व्यभिचार करना, ना हत्या करना, ना चोरी करना, ना ही लालच करना, और इसके अतिरिक्त यदि अन्य और कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस कथन में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूर्ण करना है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आमेन। 8 से 10 पद हमें पारस्परिक प्रेम के विषय में शिक्षा देते हैं। 8वें पद में हमको बताया गया है कि पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के ऋणी ना बनो, क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूर्ण किया है। मित्र, क्या आपने अपने पड़ोसी से पेचकस लिया है? वापस कर दीजिए। बहन, क्या आपने अपने पड़ोसी से एक प्याला चीनी ली है? वापस कर दीजिए। क्या आपने अपने पड़ोसी से पहनने के लिए कपड़े मांगे थे? अब वापस कीजिए। प्रेरित पौलुस हमें यही सिखाना चाहते हैं कि आपसी प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के ऋणी अर्थात कर्जदार न बनो। यहां प्रेरित पौलुस विश्वासी जन को यह शिक्षा भी दे रहे हैं कि विश्वासी को किश्तों पर सामान नहीं खरीदना चाहिए, जो कि इस युग में बड़ा प्रचलित हो गया है। आज बहुत सी कंपनियां किश्तों पर सामान देने के लिए तैयार हैं, किंतु यहां प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि एक विश्वासी जन को किश्तों पर सामान लेना नहीं चाहिए। प्रेम के अतिरिक्त किसी बात के कर्जदार ना बनो, केवल प्रेम। पड़ोसी का तात्पर्य अपनी बाजू वाले घर में रहने वाले व्यक्ति से ही नहीं है, क्योंकि ये वचन हमको बताता है कि पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के ऋणी ना बनो, क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूर्ण किया। सो पड़ोसी का तात्पर्य आपकी बाजू वाले घर में रहने वाले व्यक्ति से नहीं है, वरन प्रत्येक वो व्यक्ति जो आपके संपर्क में आता है आपका पड़ोसी है, और ये भावनात्मक प्रेम नहीं है, ये वास्तविक प्रेम है, ये आत्मिक प्रेम है, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन है। जब आप पड़ोसी से प्रेम करते हैं आप परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। प्रेरित पौलुस पड़ोसी से प्रेम करने को व्यवस्था को पूर्ण करना कहते हैं। वो कहते हैं जो पड़ोसी से प्रेम करता है वो व्यवस्था को पूर्ण करता है, किंतु कैसे? आप ये प्रश्न अवश्य कर सकते हैं। सो आइए देखें, जब आप पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो क्या होगा? नवां पद बताता है, इस कारण ना तो व्यभिचार करना, ना हत्या करना, ना चोरी करना, ना ही लालच करना, और इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस कथन में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे मित्र, 9वें पद में कहा गया है कि तू व्यभिचार ना करना। अब आप ये मत कहिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं जबकि आप उसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं। आप प्रेम के नाम पर उसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं। आप चाहे आप इसे चाहे तो प्रेम कह सकते हैं और कहते रहिए, परंतु ये व्यभिचार अर्थात अवैध लैंगिक संबंधों के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, और इसलिए ये पाप है। यदि तू प्रेम करेगा, यदि तू अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा तो व्यभिचार नहीं करेगा। परमेश्वर ने पाप की ओर से अपना विचार नहीं बदला है, इस बात का ध्यान रखिए। वो व्यभिचार को प्रेम की संज्ञा कभी नहीं दे सकता। उसकी दृष्टि में पाप सदैव पाप है। तब यहां दूसरी बात है, तू हत्या ना करना। यह हत्या केवल बंदूक चलाकर ही या चाकू मारकर ही नहीं है, बल्कि आप किसी के मान सम्मान नाम की भी हत्या कर सकते हैं, सच्चाई की भी हत्या कर सकते हैं, भावनाओं की भी हत्या कर सकते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि यदि तू अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा तो तू हत्या नहीं करेगा। तब अगली बात है, तू चोरी ना करना। यदि तू प्रेम करेगा तो किसी की चोरी नहीं करेगा, विश्वासघात नहीं करेगा, बेईमानी और धोखे से किसी की वस्तु या धन संपत्ति नहीं हड़प लेगा। तब आगे बताया गया है कि तू लालच ना करना। यदि तू प्रेम करेगा तो अपने पड़ोसी की किसी वस्तु के लिए मन में लालच नहीं लाएगा, उसकी लालसा नहीं करेगा। और इस प्रकार प्रेरित पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारे पड़ोसी से हमारा प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे नहीं कि हम क्या कहते हैं, वरन इससे कि हम उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और इस प्रकार वो मसीही व्यक्ति को व्यवस्था से पृथक नहीं करते हैं, वरन वो बताते हैं कि प्रेम के द्वारा समस्त व्यवस्था पूर्ण होती है। यदि प्रेम होगा तो व्यभिचार, हत्या, चोरी, लालच ये कदापि नहीं होंगे। फिर दसवें पद में हमको बताया गया है, प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, और इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूर्ण करना है। आज हमारी समाज में ये बड़ी भयंकर बात बन गई है कि एक दूसरे की बुराई करना। कलीसिया में भी जब लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, किंतु यहाँ हमको बताया गया है कि प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। पड़ोसी से प्रेम करना व्यवस्था की पूर्ति करना है। ये व्यवस्था का वो खंड है जो मनुष्य के प्रति मनुष्य के कर्तव्य के विषय में बताता है। प्रिय मित्र, मैं आपका ध्यान एक बात पर ले जाना चाहता हूं। ये प्रेम वो है जो आत्मा का फल है। हम आत्मा के फल के विषय में गलातियों की पत्री के 5:22 में पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार से बताया गया है, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेम आत्मा का फल है और जिसके द्वारा भलाई उत्पन्न होती है। अब हम 11वें पद से आगे देखेंगे। यहां तक प्रेरित पौलुस पारस्परिक संबंधों के विषय में बताते रहे, उन पर प्रकाश डालते रहे। उन्होंने बताया कि पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य बात में किसी के ऋणी ना बनो। जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है वह व्यवस्था को पूर्ण करता है। 11वें पद से पौलुस का व्यवहार चेतावनी पूर्ण सा प्रतीत होता है। सो आइए देखें, वो इस प्रकार से बताते हैं, समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो, अतः तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। रात्रि प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, अतः हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। हम सीधी चाल चलें जैसे दिन में, न कि रंगरेलियों, व्यक्कड़पन, संभोग, कामुकता, झगड़े और ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन न लगाओ। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। मित्रवर, 11वें पद में हमने पढ़ा, प्रेरित पौलुस कहते हैं, समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो, अतः तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। मित्रवर, लगभग 1900 वर्ष पूर्व प्रेरित पौलुस ने यह बात कही है, परंतु ये हमारे समय में और भी अधिक अनिवार्य प्रतीत होती है। अध्याय को समाप्त करने से पूर्व प्रेरित पौलुस आपके कान पर चेतावनी की घंटी बजा रहे हैं। वो आपको नींद से जागने के लिए घंटी बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्रिय मित्र, संभवतः आप संसार और उसके सुख विलास में सो गए हों और आप अपने जीवन के समर्पण के विषय में भूल गए हों। आपने कब प्रभु को ग्रहण किया था और उस समय से लेकर इस समय तक आपका जीवन संसार की चिंताओं में, भोग विलास में, लालसाओं में सो गया हो। आप अपने समर्पण के विषय में भूल चुके हों, किंतु यहां प्रभु का दास आपसे कहता है, तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। प्रिय मित्र, उस समय से लेकर इस समय तक यदि आप इसका हिसाब लगाएं, तो अब आपके उद्धार का समय और भी समीप आ पहुंचा है। मेरे मित्र, परमेश्वर की संतान के लिए संसार में सोने का समय नहीं, वरन नींद से जागने का समय है। क्या अपना सांसारिक धन, बुद्धि, ज्ञान तथा समय परमेश्वर के लिए व्यय कर रहे हैं आप? क्या आपने ये सब कुछ परमेश्वर के लिए समर्पित किया है? प्रिय मित्र, आपको पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है और इसी में आपकी बुद्धिमानी है। आपको अपना संपूर्ण व्यक्तित्व परमेश्वर के चरणों में सौंपना है। आधे से कुछ लाभ नहीं होगा। यदि आप आधा व्यक्तित्व सौंपेंगे तो आपको आधी ही आशीष प्राप्त होगी, किंतु यदि आप 100% समर्पण करेंगे तो परमेश्वर से भी 100% आशीष प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आपको देने के लिए बहुतायस्य है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित नहीं करते, आप ये प्रकट करते हैं, ये दर्शाते हैं कि आपको परमेश्वर की सामर्थ्य पर, उसकी योग्यताओं पर भरोसा नहीं है। आप ये दर्शाते हैं कि यदि आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देंगे तो परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य नहीं रख सकते। वह आपको एक अच्छा आनंदमय जीवन नहीं दे सकते। इसलिए मेरे मित्र, यह आवश्यक है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए और ये प्रकट करने के लिए कि आप वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी योग्यताओं पर भरोसा रखते हैं, आप पूर्ण रूप से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, तभी आपको 100% लाभ होगा। यदि आप वास्तव में मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमारे जीवन का पूर्ण पवित्रीकरण होगा, हमारा उद्धार का कार्य पूर्ण होगा। जैसे कि हम यूहन्ना की प्रथम पत्री के 3:30 के द्वारा सीखते हैं कि प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की आशा रखता है, वह स्वयं को पवित्र रखता है, वो पवित्रता का जीवन व्यतीत करता है। किंतु वे जो अनेक प्रकार के घृणित कार्य कर रहे हैं और 1000 वर्ष के राज तथा मसीह के दूसरे आगमन की बाट भी जो रहे हैं, वे अपने व्यवहार में सच्चे नहीं हैं, उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे मित्र, वे अपने प्रतिफल से वंचित रह जाएंगे। सो आइए हम अब नींद से जाग उठें, हम परमेश्वर के लिए जीवित रहें। तब 13 और 14 पदों में लिखा है, हम सीधी चाल चलें जैसे दिन में, ना कि रंगरेलियां, व्यक्कड़पन, संभोग, कामुकता, ईर्ष्या और झगड़े में। अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि हम नींद से जागें और सीधी चाल चलें, ऐसी चाल जैसी हम दिन में चलते हैं, क्योंकि जितना भी पाप है वो अंधकार में, रात्रि में किया जाता है। हम ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर ने हमें दिन में रखा है और प्रभु का वचन हमको बताता है कि एक विश्वासी जन को रंगरेलियों में, पियक्कड़पन में संभोग, कामुकता, झगड़े, ईर्ष्या, इसमें अपने समय को नष्ट नहीं करना है। जैसे कि आप दिन के समय आदर से रहते हैं, रात्रि के समय भी आदर से चलें। ध्यान रखिए, रात्रि के समय आपकी चाल कैसी है, मदिरापान में, शारीरिक संबंधों में, अर्थात शारीरिक वासना की तृप्ति में मन ना लगाएं, कामातुर हुए ना घूमें, आपस में किसी के प्रति जलन ना रखें, बल्कि सच्चाई का जीवन व्यतीत करें, क्योंकि विश्वासी जन परमेश्वर की संपत्ति है। विश्वासी का जीवन दिन के जीवन से संबंधित है, रात्रि के जीवन से नहीं है। उसका जीवन अंधकार का जीवन नहीं है, उसका जीवन ज्योति का जीवन है। मित्रवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शरीर के कामों को त्याग कर मसीह को प्रथम स्थान पर रखिए और परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ने में सहयोग दीजिए। संभवतः आप नहीं जानते कि आपके बुरे जीवन के कारण मसीह का कार्य असफल होता है। कितने लोग हैं जो ठोकर खाकर दूर चले जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य, वो अनुग्रह जो क्रूस पर दर्शाया गया, अनेक लोगों के जीवन में आपके कारण व्यर्थ ठहर जाता है। इसलिए मेरे मित्र, आप अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित करें, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से मसीह को प्रकट करें, ताकि दूसरे लोग आपके जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें और उसके समीप आने में उन्हें कोई संकोच ना हो। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य भी यही है। तब 14वें पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन न लगाओ। अब आप ध्यान दीजिए, प्रेरित पौलुस विशेष रूप से कलीसिया से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बात, वह पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लें, पहन लें, और दूसरी बात ये कि वो शारीरिक वासनाओं में अपने मन को ना लगाएं, उनकी तृप्ति का लक्ष्य कुछ और हो, आत्मिक तृप्ति के लिए अपने मन को लगाएं, ताकि उनके मन को वास्तविक शांति प्राप्त हो। क्योंकि शारीरिक वासनाएं, शारीरिक बातें, ये हमको कभी तृप्त नहीं कर सकती। ये बातें हमको और भी अधिक अशांत करती हैं। प्रभु यीशु मसीह को धारण करने से तात्पर्य यह है कि हम पूर्ण रूप से मसीह की पत्री के रूप में दिखाई दें। जब कोई हम पर दृष्टि डाले, हमारे आचरण, हमारे कार्यों को देखे, तो वह हम में मसीह को देख सके। प्रिय मित्र, मेरी प्रार्थना है कि आप इस वचन के अनुसार स्वयं को मसीह यीशु की साक्षी के लिए तैयार करें, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का महान उद्देश्य पूर्ण हो सके। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे और अपने वचन के अनुसार आपको चलने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद श्रोता। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।